राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। आइए पधारिए। नीचे बैठने में दिक्कत तो नहीं?
ओके
पक्को। धन्यवाद करते हैं महाराज
मुकेश भाई।
महाराज नाम उसका चलता है महाराज का महाराज मुकेश भाई और परिवार का, जिन्होंने अपने निवास स्थान पे कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के हरिनाम संकीर्तन और हरी कथा का आयोजन किया है, और आप सब लोग महानुभाव पधारे, आपका स्वागत करते हैं। एक कलयुग के लिए विशेष शास्त्र में सरल साधन बताया है, आप सब हमारे पीछे बोले हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये पुराणों के अंदर अद्भुत एक मंत्र कलयुग के लोगों के लिए सरल साधन है। हरि नाम हरिहर नाम हरि एव हरिहर नाम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम तीन बार बोला है। कोई चीज जब तीन बार बोलती है इसका मतलब कि ये पूर्ण है, पक्का है, इसमें दो राय नहीं है, इसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। भगवान कभी भाई कोई बात सत्य करनी होती है तो तीन बार बोलते हैं। वसुदेव और देवकी को कहते हैं कि मैं आपके घर में तीन बार, आपने मेरे को कहा कि मैं पुत्र हूं तो मैं तीन बार आपके घर आया, पहले प्रश्नी गर्भा होके आया, फिर वामन देव के होकर आया, और अभी वसुदेव कृष्ण होके आया हूँ। तो तीन बार कोई काम करना पक्को। तो यहाँ भगवान के वचन है हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम। एव का मतलब ओनली, केवल। एव का एव छोटा एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन वो इतना भारी शब्द है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे एक मंत्र सदा बंदर में जाके पढ़ते, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं। भगवान को पहले माता कहते हैं, ध्यान रखना, भगवान का संबोधन पहले माता के नाम से होता है। इस विचार देखो, इसको बुलाओ नहीं, इसका ये घर है, इसको यहाँ बिठाओ। फूल कहती है, फूल के साथ आए, वो कहता है मैं घूमने हुए फूल पे गया और मेरे को मार दिया, ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठने दो बेचारे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो कहता है कि ये मेरे मेरे मेरी चीज को आपने क्यों रखा है, तो इसको इसको इसकी इसके हवाले करते हैं कि बैठो तुम इसमें आनंद लो। हमने श्री राधे श्याम इसका घर है। तो भगवान को वेद का मंत्र में हम बचपन से उपासना करते हैं, तुम्हें वह माता, भगवान आप ही माता हो और नहीं। और माता जन्म देती है फिर चली जाती है संसार से, लेकिन आप पालन पोषण करने वाले माता हो। भगवत गीता में भगवान कहते पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पालन पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। वैसे भी कौन दे रहा है हमारे को सांस लेने के लिए हवा? कौन दे रहा है? कोई गवर्नमेंट दे रही है क्या? अमेरिका से आ रही है या कोई पैसों से ले रहे हैं? मुफ्त की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और सांस नहीं ले दो मिनट तो मर जाएंगे। तो मुफ्त का इतना सारा भगवान ने प्रबंध किया है सांस का, और अस्पताल में आईसीयू में ऑक्सीजन लगाते हैं तो 200 दिनार रोज का बिल आता है। भगवान बिल भेजने भेज दे तो सबका देवाला निकल जाएगा। ये मुफ्त का माल है जिसके ऊपर मौज कर रहे, ये सत्य है, इसको समझना चाहिए। इसलिए रोज भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि कितने बड़ी कृपा की है, सांस दो मिनट नहीं ले तो मर जाएंगे, और आपने इतना सारा महंगा सौदा मुफ्त में दे दिया है। इसलिए कहते हैं भगवान गरीब नवाज है, ये तो बेचारे सबके लिए सस्ता कर दिया जो सबसे महंगी चीज है। इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसके ऊपर न टैक्स है, न इसके ऊपर कोई कमीशन है, ये तो फ्री का माल है, क्योंकि भगवान सबको माता पिता है, सब कुछ हमारा प्रेम करने वाला है। इसने बहुत सरलता से ही हमको, इसलिए भगवान को पहले माता कहते हैं। हमको दुख जब भी होता है तो हे मेरी माँ मुख से निकलते हैं। क्यों? क्यों हर वक्त दुख में माँ ने हमारे को बहुत अपने अपने गोद में ले लिया, अपने आंचल में ढक लिया, तो भगवान का मातृभाव जो रूप है वो बड़ा दयालु है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में जो हरे शब्द है ये भगवान का मातृ रूप है। राधा है जगतेर माता, ये वेद का मंत्र है। राधा है जगतेर माता, सारे जगत की माता है राधा। क्या है? अहलादिनी शक्ति, भगवान की अहलादिनी, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। अहलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसानंद, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। अहलादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण, और जो भक्त है उनका पोषण करती है, जैसे माँ पोषण करती है अपने बच्चे को, खिलाती पिलाती नहलाती, ऐसे ये भगवान की अंतरंग शक्ति जो भगवान का मातृ रूप है, माता का रूप है, ये असल में हमारे को हमारा पोषण करती है। इसलिए भगवान को माता कहते हैं। भगवान का जो मदरली एस्पेक्ट जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। कृष्ण के साथ उसका राधा का स्वरूप होता है, नारायण के साथ वही लक्ष्मी है, राम जी के साथ वही सीता है। ये सब अंतरंग शक्ति का रिश्ता है, और उसी का छाया रूप इस संसार के अंदर दुर्गा है। छायानुरूपा दुर्गा, बिभर्ती दुर्गा, उसका छाया रूप है। क्योंकि संसार आध्यात्मिक जगत का छाया का रूप है। जो असली चीज आध्यात्मिक जगत है वो इस दुनिया के अंदर प्रतिबिंब के रूप में है। तो ये तमेव माता च पिता, एव मैं शब्द एव की बात कर रहा था। एव शब्द छोटा संस्कृत का है, लेकिन उसका अर्थ है उसके अलावा और कोई नहीं, वही एक माता वही एक पिता। एक हरि नाम ही केवल मात्र साधन है। तीन बार बोल दिया, इसका मतलब यही साधन है। फिर तीन बार बोला, ना एव नास्तेव नास्तेव नास्तेव, तीन बार बोला, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, तीन बार क्यों बोला? तब लिखा है सत्य युग में ध्यान करना भगवान को प्राप्त करने का साधन था। आदमी की आयु होती थी, मानव सत्य युग में लाख साल जीता था, तो 50 साल मौज करके खा पी के फिर के बाद जाके हिमालय में तपस्या कर लेता था। तो उसके पास इतना समय था कि वो ध्यान कर सकता था। और ध्यान करने के लिए घर में ध्यान नहीं हो सकता। घर में आप ध्यान करोगे तब तक कोई काम याद आ जाएगा, कोई बुला लेगा। ध्यान घर में नहीं हो सकता। ध्यान एकांत के पहले लिए ध्यान के लिए है, एकांत का स्थान चाहिए जहाँ कोई। इसलिए ध्यान कहाँ होता है? अरण्य में होता है। अरण्य का मतलब जहाँ रण न हो, रण न हो मतलब झगड़ा न हो, जिसको वन बोलते हैं। तो नदी के किनारे हिमालय में ध्यान करने की वो जगह है जहाँ और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आइए, आपका स्वागत। कुछ ऊपर भी बैठना चाहे तो उधर आ सकते हैं। आप लोग बैठ आ जाए। तो ध्यान नहीं हो सकता कलयुग में। प्रयास किया जा सकता है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य है मनोवृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को रोक कर बाहर न जाने दे, और अंतर्मुखी करके हृदय में खिले हुए कमल के ऊपर भगवान का परमात्मा का दर्शन करे, ये ध्यान का लक्ष्य है। अब कौन आंखें बंद करके अंदर परमात्मा को देखता है? आंखें बंद करते तो पूरी दुनिया दिखती है। तो ध्यान कैसे होगा? ये ध्यान बहुत मुश्किल है। कलयुग में ध्यान करना बहुत मुश्किल है, और शहरों में नगरों में ध्यान करना, और आजकल मोबाइल पास में ध्यान कहां से होगा? मोबाइल तो ऐसा कलयुग ने आविष्कार किया है कि आपकी जेब में पड़ा है। बच्चे को तो घर में छोड़ के जाता है, लेकिन ये सारा दिन रोता रहता है। वा, वा, वा। और बच्चे से भी प्रेम से गले से लगाते तब चुप करता है। ये तो कहीं शांति से रहने वाला नहीं है। तो कहा बात क्या कर रहे थे कि ध्यान करना सत्य युग का साधन था। लोगों को और कोई सब काम दुनिया के पूरे करके फिर जाके एकांत में ध्यान करते थे, और उसमें सांस को रोकने का अभ्यास करते थे। आयु इतनी बढ़ा देते थे। अपनी आयु का मतलब है सांस से आयु होती है, उम्र से आयु नहीं होती। उम्र से आयु नहीं होती, आयु सांस से होती। आदमी बड़ा, ब्राह्मण बड़ा होता है आध्यात्मिक ज्ञान से, उम्र से नहीं। क्षत्रिय बड़ा होता है अपने बाहुबल से, जो दूसरों की रक्षा कर सके। वैश्य बड़ा होता है अर्थ से, जिसके पास ज्यादा है, जो संपन्न हो। और उम्र से तो संसार में मूर्खों को ही बड़ा मानते हैं कि ये बड़ा है, सफेद बाल धूप में नहीं किए, लेकिन काम किसी के नहीं है। तो असल में बुद्धि मान को ही बड़ा माना जाता है। अब सुखदेव गोस्वामी भागवत के लिए आए, 16 साल के थे। उनके पिता व्यास जी के सामने बैठे थे, और उसके गुरु नारद जी भी बैठे थे, लेकिन सुखदेव को ही भागवत बताने के लिए क्यों कहा गया?
कि वो तो पहले ब्रह्म ज्ञान में संपन्न थे, उसके बाद उन्होंने भागवत का अध्ययन किया था। जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं ज्ञानी, वहाँ से तो वो लौट के आए थे, तो उनका स्तर इतना ऊपर पहले था, तो उसका अनुभव का ज्ञान था। तो ध्यान करना सत्य युग में संभव था, और उस ध्यान की ध्यान योग भगवद गीता का छठा अध्याय है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, द्वापर युग में है, राजपुत्र है, और सब सुविधा है। वो कहता है मुझसे नहीं होगा भगवान, ये तुम्हारा मन शांत करना मेरे बस की बात नहीं है। जब द्वापर युग में अर्जुन ये करने में संभव नहीं था, तो हम आज बैठ के कहें कि हम ध्यान कर लेंगे, तो ये जरा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं। एक आदमी कोई हिमालय में करता हो तो संभव है, ऐसे नहीं कि जब नाम लिखा है तो वो सत्य है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते जो गृहस्थी घर में बैठे, हमारे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये अभी भी आज भी ध्यान कर रहे हैं, हिमालय में जाके देखते हैं तो योगी बैठे हुए हैं, उसकी आयु भी कई कितनी बड़ी हो गई है, कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है, बैठे हैं करते हैं। लेकिन सामान्य घरों में ध्यान करना, मतलब एक भगवान का जो रास्ता होता है वो सबके लिए होता है, तो सबके लिए ध्यान करना कलयुग में संभव नहीं है। पहला नाचते वक्त, दूसरा नाचते वक्त, त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। वो यज्ञ का इतना बड़ा अनुष्ठान होता था कि सारे राजा महाराजा बुलाए जाते थे, सारे ऋषि आते थे, सामग्री यज्ञ की शुद्ध घी चाहिए, गाय का शुद्ध, और आग जलाने के लिए लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिसते थे, नहीं तो मंत्र से आग जलती थी। तो वो यज्ञ करने की अब सामग्री नहीं मिलेगी, मंत्र उच्चारण करने वाला पंडित भी नहीं मिलेगा, और आग जलाने के लिए लकड़ी से कोई आग नहीं जलाता, वो जरा माचिस निकाल दे पंडित जी तो सिगरेट भी साथ नीचे गिरती है, तो उस यज्ञ का फायदा क्या है। और महाराज कहता है शांति का मैंने यज्ञ किया और दक्षिणा थोड़ी मिली तो महाराज ही अशांत हो जाता है, तो फिर यज्ञ का लाभ कहां से होगा बताओ। तो देखना चाहिए, आप देख लो, तो जो स्थिति आज की है वो तो ऋषि यज्ञ कर रहे थे, किसी का यजमान तो नहीं बनाया था, और वो तो 88,000 ऋषि बैठ के यज्ञ कर रहे थे, वो द्वापुर में यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के सामान में शाम को टाइम बचता था तो कहते थे आप थोड़ी कथा सुनाइए। 10 दिन का मतलब 3 दिन कथा सुनने के बाद क्या पहले कहते हैं कि ये यज्ञ कर रहे थे हमने, लेकिन इससे हमारा अंदर कोई धुला नहीं, ये धुएं से हम काले हो गए, ये तो कथा अमृत ऐसा है कि तो क्योंकि कलयुग में द्वापुर के अंदर यज्ञ धर्म था ही नहीं, वो कर तो रहे थे लेकिन उसे फल नहीं मिल रहा था। तो त्रेता भगवान रामचंद्र बड़ा महान यज्ञ किए, त्रेता युग में यज्ञ से यज्ञ वैसे यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, उस यज्ञ की आहुति डालते हैं जब, तो शब्द होता है आवाहन, आवाहयामी, आवाहयामी का मतलब आप भगवान यहां पधारिए, ना नहीं कर सकते, निमंत्रण में आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी है, लेकिन आवाहन को नाम नहीं किया जा सकता, आवाहन का मतलब आना ही पड़ेगा, आवाहयामी आपको आना ही है। और देवता आते थे, अपना भाग लेते थे और दिखते थे, ये द्वापुर तक त्रेता में तो जो रामायण में ये वर्णन आता है, जब महाराज दशरथ के घर में पुत्रिष्ट यज्ञ हो रहा था, यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया था विशेष पुत्रिष्ट यज्ञ के लिए, वशिष्ठ जी घर में थे, वो यज्ञ कराने के लिए बोला पुत्रिष्ट यज्ञ के लिए आपको ऋषि श्रृंग को बुलाना पड़ेगा, उसका वही अधिकार है। ये बहुत बड़े उन लोगों में कितना ऊंचा भाव था कि खुद ही बड़ा गुरु होते हुए भी जो जिसके स्पेशलिस्ट था उसी को बुलाया। और जब यज्ञ शुरू होने लगा तब सब देवता अपना भाग लेने के लिए आए, तो सारे देवताओं ने मीटिंग करके ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपने रावण को ऐसा वरदान दे दिया है, अब तो हमारी पूजा पाठ बंद करा दी है, कहीं से कोई पूजा कर नहीं सकता, गौ सेवा कर नहीं सकता, यज्ञ कर नहीं सकता है, अब हम करें क्या ब्रह्मा जी। तो मीटिंग के अंदर उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और भगवान विष्णु ने आते ही कहा आपका इस चिंता को मैं समझता हूं, आप सब लोग यहां यज्ञ में अपना भाग लीजिए, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं अपने आप को इस यज्ञ में देने आया हूं। अभी इस यज्ञ के कुंड से यज्ञ पुरुष निकलेगा, जो अंदर से पायसम लेके निकलेगा, जो खीर का लोटा लेके निकलेगा, उसके अंदर मैं प्रवेश करूंगा, और मैं दशरथ के घर में चार पुत्रों के रूप में, चार चतुरंग जिसको कहते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में चार पुत्रों के रूप में प्रकट होगा। तो उस यज्ञ में त्रेता के यज्ञ में साक्षात देवता तो आए थे, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट हुआ था। वो जब दक्ष के यज्ञ की बात सुनते हैं तो भगवान विष्णु यज्ञ में आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी, तो ये सब देवता आते थे। और नहीं आते तो हमको क्या पता उनका फोटो कैसा है, कोई कैमरा थोड़ी लेके बैठे थे कि उसका फोटो है। आए थे तब किसी ने फोटो निकाला, किसी ने चित्र निकाला, ऐसे मनोमन मन से तो नहीं निकाला है। वो तो आते थे धरती के ऊपर, भगवान आते थे तब उसका पता लगता था कि भगवान कौन है। तो त्रेता युग के अंदर यज्ञ साधन था और उससे भगवान आते थे और आशीर्वाद देते थे, सीधा डायरेक्ट कहते थे क्या चाहिए। वो भी समय चला गया। द्वापर युग के अंदर बहुत विस्तार से भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन उस पूजा के लिए सामग्री बड़ी उत्तम सामग्री। आज भी अगर आप देखेंगे श्रीनाथ जी नाथ द्वारे में रोज रात को जमुना जी का जल भर के मटका गाड़ी जाती है, सुबह सवेरे वहां 6 बजे पहुंचती है, उस जमुना जल से श्रीनाथ जी का रोज अभिषेक होता है आज भी। अब बताइए इतनी कौन व्यवस्था करेगा, अगर जमुना का जल यहाँ लागे कैसी व्यवस्था, मतलब ये पूजा कितनी मुश्किल हो गई। तो पूजा इतनी ही सर। और नाथ जी एक बार श्री नाथ द्वारे में एक हमारे प्रेमी भक्त थे, उनका मनोरथी के सोना भगवान को पहनाना है, सोना ले गया, लेकिन वहाँ उनका अपना ही वहाँ बैठा हुआ है, वो सब धागे निकालेगा, उनका अपना रेशमी धागा अलग, वो चीज भगवान को पहनाने का सारी सामग्री अलग है, वो डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है, हमारा बना हुआ नहीं लेंगे, उसके धागा अंदर वो रेशमी अलग वो डालेंगे, तब वो भगवान को, वो उतना सारा कहाँ कर पाएगा, अभी कहाँ कौन कर पाएगा। तो वो पूजा की पद्धति भी कलयुग में सरल नहीं है और उतनी संपन्न भी हम नहीं है कि उस तरीके से पूजा करने का, और पूजा करें भी मंदिर के अंदर इतना सुंदर आभूषण रखें तो आजकल भगवान के आगे वाली पेटी के चोर सबसे ज्यादा हैं, जो भगवान की पेटी होती है उसी को उठा के आ जाए, लोग इतने नास्तिक हो गए हैं कि बोले, एक को मैंने देखा कि तू मंदिर के अंदर भाई बैठ के बीड़ी क्यों पी रहा है, बोले बाहर पुलिस पकड़ के यहाँ भगवान की छाया में बैठाऊं। तो लोग ऐसा मंदिरों का उपयोग कर रहे हैं, तो मंदिरों के अंदर आस्था लोगों की मंदिरों के ऊपर नहीं रही, और मंदिर के अंदर पुजारी जो है बेचारा पेट अपने पेट पालने के लिए बैठा है, भगवान की पूजा के लिए नहीं बैठा है। अगर ठीक तरह से इसको चकास करके देखेंगे तो पुजारी बेचारा अपने आजीविका के लिए बैठा है, भगवान की सेवा के लिए नहीं बैठा है। और पहले पुजारी से हम प्राण की आज्ञा से काम करता था, अब पुजारी हमारी आज्ञा से काम करता है, तो बताइए पूजा कहाँ होगी। अब देख लीजिए जो स्थिति अभी हो गई है, तो इसका अर्थ ये है कि ये पूजा भी संभव नहीं है कलयुग में, फिर भी करनी चाहिए क्योंकि अभ्यास तो होगा ना। लेकिन कलयुग के अंदर जो फलदायक, जो तत्काल फल दे, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में जो फल दे, वो है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, केवल भगवान का नाम। ये जो संकीर्तन यज्ञ थोड़ी देर पहले यहाँ हो रहा था, ये सारे पूजा पाठ, जैसे भागवत में एक श्लोक है, जिसने सब तीर्थ किए हैं, जिसने सब यज्ञ किए हैं, जिसने सब दान किया है, उसके मुख से भगवान का नाम केवल निकलेगा। इसका मतलब उसने ये सब कुछ पहले कर दिया है, अब तो वो केवल इस नाम के महायज्ञ से अपने हृदय को बहुत पवित्र कर रहा है। ये भगवान के नाम का कीर्तन क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है आईना। देखो आईना सामने होता है, हमारी शक्ल दिखती है कि नहीं दिखती है उसमें, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा दिल आईना है। और फिर भगवान कहते हैं भगवद गीता में सबकी दिल में बैठा हूं, भगवान कहां बैठे, हमारे दिल में बैठे, भगवान हमारे दिल में बैठे, हमारा दिल आईना है तो हमको दिखते क्यों नहीं। भाई आईने के सामने कोई चीज है तो दिखनी चाहिए ना। बोले दिखते इसलिए नहीं है कि आईने के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है, एक महीना घर बंद करके जाओ तो आईने में अपना मुंह नहीं दिखता है, मिट्टी चढ़ गई ऊपर। और घर के अंदर अगर चूना पूछी करो आईने के ऊपर पेंट चढ़ जाए तो फिर तो कपड़े से झाड़ने से भी नहीं उतरता है। और आईने के पीछे वाला रोगन उतर जाए तो आईने के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। तो इस संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय रूपी दर्पण के ऊपर थोड़ी सी हल्की मिट्टी होती है, और कपड़ा झाड़ने का मतलब थोड़ा 2 दिन कीर्तन किया, 10 दिन कीर्तन किया तो हृदय साफ होता है, उनको थोड़ा सा आनंद आने लगता है, तो वो जल्दी भगवान की भक्ति की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर वो थोड़ा सा पेंट जैसा होता है, वो झाड़ने से नहीं होता है, उनके लिए कुछ बहुत बड़ा परिश्रम करके उसको घिस घिस के उतारना पड़ता है, जब उतरता है तब उसका मन 10-20 साल लगा देता है। कुछ के ऊपर तो डामर ऐसा होता है, कुछ भी करो उतरने वाला नहीं है। तो ये सब प्रकार के लोग संसार में है, लेकिन फिर भी भगवान हृदय में है तो हृदय साफ कैसे हो। अपने आप तो साफ नहीं होगा, कौन साफ करेगा? बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा अपने आप को साफ कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे हृदय को हम अपने आप साफ नहीं कर सकते। कर सकते तो कब का कर लिया होता। कौन करेगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो, अनादि काल से हृदय के ऊपर जपे हुए मैल को धो के साफ कर देता है, मैल को धो के साफ कर देता है। और जैसे ही हृदय के अंदर से मैल उतरा, भगवान अंदर दिखते हैं। और जैसे भगवान दिखते हैं, उनके अंदर इतना आनंद है, इतना प्रेम है, इतना रस है कि फिर सारे दुनिया के रस मर्यादा पूरी करने के लिए होते हैं, लेकिन अंदर का रस का अनुभव और हो जाता है। एक दो शब्द बड़े अच्छे एक महात्मा ने कहे, प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो संसार से। ये बहुत बड़ा सूत्र है, प्रेम करो भगवान से, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, और कौन हमारे दिल में बैठा है उसके अलावा। प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो संसार से। पति का व्यवहार, पुत्र का व्यवहार, ग्राहक का व्यवहार, दुकानदार का, सब करो, लेकिन प्रेम भगवान। और हम क्या करते हैं? प्रेम संसार से, व्यवहार भगवान से। भगवान तेरे पास संडे को आएंगे कि मंडे में फ्राइडे को आएंगे, व्यवहार हमारा भगवान से हो गया और प्रेम संसार से हो गया। ये एक बहुत बड़ी भूल हो गई है माया के कारण, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। जिससे प्रेम करना चाहिए वो तो भगवान है केवल, क्योंकि भगवान का प्रेम ही धर्म एक ही दुनिया में है। हमारे हृदय में जो प्रेम है वो जागृत हो जाए भगवान के लिए। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साझे कभू नाही, पहले से प्रेम सबके हृदय में भरा हुआ है, उसको जगाना है। उसको वो सोया हुआ जैसे है, उसको जगाना है। कैसे जगेगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करै उदय, एक हरि कथा सुनी जाए, हरि कीर्तन सुना जाए, तो वो प्रेम एकदम प्रकट होकर बाहर निकल आएगा। पहले जमाने में नल होता था पानी का, तो मई जून में पानी नहीं निकलता था नल से। क्यों? बीच में वैक्यूम हो जाता था, हवा का खाल हो जाता, तो ऐसे चलाते थे हवा निकलती थी। तो लोग क्या करते थे? ऊपर से एक जग पानी का डालते थे, तो फिर चलाते थे, पानी निकलता था। तो ऐसे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम सबके हृदय में भरा हुआ है, लेकिन बीच में माया का इतना सारा हवा आके अटक गया। कान के द्वारा हरि कथा और हर कीर्तन गाएगा तो फिर अंदर से प्रेम बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये कथा उस मैल को धोने के लिए है, और सबके हृदय के ऊपर है। जो इस संसार में आया है वो आया है क्योंकि मैल था तब आया है, नहीं तो काहे के लिए है? कर्मों के बंधन है तब आए हैं, तो इसके लिए कुछ धुलाई करनी चाहिए। जैसे रोज शरीर को धोना जरूरी होता है ना, ऐसे हृदय को भी धोना चाहिए। हृदय के अंदर तो बहुत सारे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, कितना मंदर कचरा पड़ा है, उसको धोने का कोई साधन संसार में नहीं है। जैसे हम कहते हैं बच्चों का बुश करना जरूरी है क्योंकि दांत साफ नहीं होंगे तो दुर्गंध आएगी, लेकिन हमारे अंदर में जो काम क्रोध है उससे कितना बड़ा संसार के अंदर झगड़ा हो रहा है, उसके साधन कुछ भी नहीं है किसी के पास। इसलिए मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, रोज हरि के गुण गाया कर। ये अंदर में, जैसे बाहर झाड़ू रोज लगाने का नियम है, ऐसे अंदर भी रोज झाड़ू लगाना चाहिए। तो हमारी तो सिर्फ विनती है कि ये इतना आसान है कि बच्चा भी कर सकता है। ये कीर्तन 16 अक्षरों का ये मंत्र कलयुग के लिए ब्रह्मा जी ने नारद के द्वारा बिना किसी नियम टेम के उठना बैठना चलते फिरते खाते पीते कभी भी कहीं भी जप कर लो। ये एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र को स्नान करके संध्या वंदन में जप करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो उसका कोई फल नहीं है। उसका टाइम सिर्फ संध्या वंदन का है, उसका नाम ही संध्या वंदन का मंत्र है, वो संध्या का मंत्र है, और समय जपने से उसका कोई फल नहीं होता है। और उसके उसको गुरु से जब मिलेगा तभी जपने से उसका फल होगा। लेकिन ये ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से जो वेदों के आचार्य हैं और नारद के माध्यम से कलयुग के लिए सबको सरलता से जपने का, ये कलिसंत में उपनिषद का मंत्र है, ये शास्त्र का प्रमाणित मंत्र है, बच्चे भी कर सकते। 5 मिनट घर में कीर्तन हो जाए और समझदार घर में, ये इसको हम बोलते हैं ये झाड़ू है हमारा, ये रोज बैठ के थोड़ा सा हृदय साफ करने का अभ्यास करते हैं। जैसे घर में रोज झाड़ू निकालते हैं तो ये हमारे को रोज 1-7 मिनट बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कितना सरल है, सब लोग कर लिया। ये अंदर में बहुत एक शांति और आनंद का अनुभव होगा। जैसे रोज बुश करना जरूरी है, ऐसे रोज भगवान का एक माला कम से कम जपने का नियम बना ले और फिर देखो आपके अपने मन में कितना हल्कापन और शांति आती है। और ये करने का सबको करना चाहिए, ये एक के लिए नहीं है। किसी को हमने कहा ये झाड़ू है, बोला झाड़ू हम अपने घर में रख के घूमते हैं, आप गले में डाल के क्यों घूमते हो? झाड़ू तो हर एक के घर में होता है। मैंने बोला भाई कुछ लोग रोड के ऊपर झाड़ू लेके गलियां साफ नहीं करेंगे, तुम घूम भी नहीं सकते हो। हम तो भगवत सफाई वाले हैं, सारे शहर की सफाई करते हैं ताकि आप सुख से घूम सकूं। भाई झाड़ू वाले होते हैं ना, कहीं उधर घूमते हैं ना गली में लेके, हम तो लेके घूमते हैं कि जगह ही सब साफ हो ताकि आप सुख से जी सको। तो असल में हमारा धर्म ये है, कैसे भी कलयुग के अंदर ये घर के अंदर करना क्या है, बहुत सरल काम है। ये कलयुग के अंदर आप लोग तो काम करने वाले सुबह घर से जाते हो रात को 10 बजे आते हो, आपके बस में है नहीं ये कुछ करना। इसलिए कलयुग में अगर घर के अंदर संस्कृति और वातावरण को संभालना है तो ये माता आपका धर्म है। अगर आप घर के अंदर धार्मिक माहौल बनाओगे तो बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे। कल युग में किले की, धर्म के किले की अंतिम दीवार केवल नारी है। अगर ये नारी अपना धार्मिक कर्तव्य निभाए और घर के अंदर भोजन जो बनाए वो भगवान को भोग लगा दे और प्रसाद परिवार को खिलाए तो परिवार के अंदर प्रेम और शांति का वातावरण होगा। और प्रसाद पाने से पहले या प्रसाद खाने के बाद 5 मिनट यही मंत्र बैठ के जप करके अनुभव करके देखो आपके घर के अंदर वातावरण कितना मधुर और कितना आनंदमयी हो जाता है। बहुत सरल काम है, भोजन तो बनाना ही है लेकिन कहो कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा लेंगे, कितना आसान काम हो गया। तो जीवन ही बदल जाएगा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, प्रसाद का मतलब परमात्मा, प्रसाद साक्षात परमात्मा सामने, ऐसे जब खाते हैं तो उससे आनंद आता है। भोजन खाओ और प्रसाद खाओ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गीता ने तो लिख दिया है ऐसा कि जो भोजन बनाकर भगवान को अर्पण नहीं करता है और केवल पेट भरने के लिए खाता है तो पाप खाता है। भुंजन्ते ते अधम पाक अधम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए पका के खाता है, अघम पापा घिनौना पाप, क्योंकि ये अन्न हम तक पहुंचते पहुंचते जो कुछ हम खाते हैं कितने लोगों का इसके अंदर परिश्रम होता है, कभी हमने विचार किया है कितना इसके ऊपर हिंसा कितना कुछ हुआ है। उसको शुद्ध भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाया जाए तो जीवन प्रसाद कृपा है, वैसे सामान्य भोजन हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता है, पेट भर सकता है। तो ये दो ही काम करने से सरलता से कलयुग के अंदर एक हरिनाम लेना जीभा से और एक जीभा को भगवान का प्रसाद खिलाना, बस ये दो काम हर घर के अंदर हो जाए तो वैकुंठ का वातावरण एक शांति का माहौल और एक प्रेम का वातावरण अच्छा बन सकता है। और ये धर्म की परिकाष्ठा है, ये भगवान का प्रेम जागृत हो जाए
तो यही धर्म है एक संसार में। परो धर्मो अधोक्षजे, ये धर्म कौन सा परम है जिसमें भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वो जागृत हो जाए, उसका यही साधन है प्रसाद और कीर्तन। और जब समय हो महीने 15 दिन में ऐसे सत्संग आयोजन करें, 10-20-25 परिवार, 2-4 परिवार इकट्ठे होकर ऐसे करें तो बच्चों को सबसे बड़ा सहायता मिलती है, बच्चों को 4-5 अंकल मिलती है, 4-5 आंटी मिल जाती है। आजकल इतना छोटा हमारा परिवार हो गए हैं कि बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं अकेले अकेले, तो क्या करेंगे, टीवी के अलावा उनके पास कुछ भी साधन नहीं है, इसलिए जीवित टीवी उनसे प्रेम नहीं कर सकती है। टीवी के पास भावनाएं नहीं है, ये तो कोई व्यक्ति ही भावना दे सकता है, टीवी भावना नहीं दे सकती। टीवी भावना खराब कर सकती है लेकिन भावना बना नहीं सकती है, इसलिए जीवित आदमी गोद में बच्चे को उठाता है तब सुख मिलता है। तो ऐसे 4-5 घरों का ही आपस में संगठन होकर सप्ताह सप्ताह में बैठ के थोड़ा कीर्तन करेंगे, आपस में प्रीति भोजन करेंगे, चाहे अपने घर घर से थोड़ा ला के खाओ, ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें बच्चों को एक आध्यात्मिक माहौल मिले, ऐसा वातावरण मिले जिसमें बच्चों का नीम पक्की हो जाए। बाहर तो ऐसा समाज संसार अभी इसको कह रहा हूँ कट थ्रोट टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, ये कारपोरेट वर्ल्ड ऐसा है कि आदमी दूसरे को जीने नहीं देना चाहता है, जो संसार का कि संसार तो ऐसा है कोई दूसरे को जीने नहीं देने का, लेकिन कम से कम बच्चों को बचपन में ही ऐसी संस्कृति दे के ऐसा वातावरण दे के एक नीम उनकी पक्की करो, इम्यूनाइजेशन ऐसा पक्का करो कि बाहर जब जाएं तो उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास हो कि जो वो कर रहे हैं अच्छा है, जो उनका धार्मिक निष्ठा है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। नहीं तो बाहर के अंदर धर्म तो सीखा नहीं बचपन में, तो उनका कमन कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, न इधर के न उधर के भोग में लिप्त हो गए, रोग में लिप्त हो गए, इधर के वो उनके पास कोई संस्कृति कोई साधन भी नहीं रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि घरों के अंदर ऐसा वातावरण पैदा किया जाए। तो इसलिए इस सत्संग से हमारा यही आप सबको प्रार्थना है, विनती है कि घर घर में इस तरीके से 15 दिन महीने में भी आयोजन करेंगे तो उससे आपके बच्चों के संस्कारों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और घर का वातावरण जो है प्रेममय हो जाएगा। बहुत से डिफरेंसेस आर रिकनसाइल्ड, बहुत से हमारे जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो खत्म हो जाती है जब ऐसे हम शांति वाले वातावरण में बैठ के हरि कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। समय का अभाव है, सुबह सबको जाना है, कथा को या विराम देते हैं। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल हरि नाम। कलयुग के अंदर ध्यान करने में भी समर्थ नहीं है हम, क्योंकि शहर में रह रहे हैं, हमारा माहौल ऐसा नहीं है, यज्ञ करने में हमारे पास सामग्री है न कोई साधन है और पूजा करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए ये नाम कोई भी कहीं भी कभी भी ले सकता है। तो हम अपने घर के अंदर ये कलयुग का युग धर्म का पालन करके अपने जीवन को सफल करें। ये सरल साधन हमने अनुभव करके एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके पाश्चात्य देशों में देखा, अमेरिका में प्रभुपाद ने बड़ा प्रयोग किया हिप्पियों के ऊपर जो नशे में लिप्त थे, सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन कीर्तन और केवल प्रसाद से उनका जीवन साधु तो हो गया, वो साधु संत बन गए, विश्व भर में गीता भागवत का प्रचार करने लग गए, तो उनका जीवन में परिवर्तन आंखों से देखा हुआ है। अभी साक्षात 2-4 साल से हम रशिया में जाके देखते हैं, भारतीय कोई नहीं मिलता है, लेकिन वो रशियन साड़ी पहने तिलक लगा के और कीर्तन करके वो गीता सुनना चाहते हैं। तो इसका अर्थ है कि संस्कृति को जागृत करने के लिए ये साधन बहुत बड़ा प्रमाणित है। जो अभी आप तो भाग्यशाली हैं, भारतीय मूल के हैं, आपके लिए कुछ ये कहना मुश्किल नहीं, उन लोगों के अंदर जो भाव देखोगे आपको हमको आश्चर्य लगता है कि वो किस तरीके से साधना कर रहे हैं। और एक नहीं 100 से अधिक 30-40 से ज्यादा तो मंदिरों में मैं देख के आया हूँ और उससे 10 गुना और ज्यादा जगहों पे कोई भारतीय है नहीं और वहाँ ये संस्कृति काम कर रही है। और हमको अपनी ये चीज को अभी संभालना चाहिए। मेरा पहला अनुभव ये है, जब मैं कराची में डॉक्टरी मैंने कर ली थी, मेडिकल MBBS में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे साला वकील था, मुझे कहा कि उस घर में गया तो एक किताब देखा, भगवद गीता यथारूप, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कमिंग बैक। तो मेरे आश्चर्य, किताब कहाँ से बुलाई, यहाँ अमेरिकन भक्त है वो, यहाँ ये रामबाग, उसका पुराना नाम था रामबाग, अब इसको आरामबाग कहते हैं, बोला यहाँ एक सत्संग करने आता है। तो मैं उस सत्संग में गया एक दिन फ्राइडे को, तो मेरे को अंदर में सिर्फ ये एक भावना आई कि भगवान ने मेरे को कितना अच्छा ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, घर में भगवान का मंदिर, बचपन में ये सब कीर्तन हम करते थे, वो सब छोड़ के मैं डॉक्टर बन के अब हूँ मैं। हो सकता है कि 10-20 हजार आदमियों को हो सकता है चिकित्सा करूँ, अथवा मैं पढ़ाऊंगा तो 100-200-500 डॉक्टर अच्छे बना सकूं। लेकिन ये जो काम कर रहा है बेचारा अमेरिका से आके, जिसका ये काम नहीं था, मेरे को करना था, मैंने अपना काम छोड़ दिया, तो मेरे को लज्जा आने लगी। मैंने डॉक्टर तो बहुत बन जाएंगे, ये काम कौन करेगा, मेरे को इस काम को मैं नहीं करूंगा। हो सकता है आने वाले 100 साल में हम ही अपने ही संस्कृति में अछूत जैसे लगने लगेंगे, अपनी संस्कृति में हम ही अछूत लगेंगे, तो अभी हमको सावधान होके तब उस दिन, ये तो 80 की बात है, उस दिन हमने विचार किया कि पढ़ लेंगे, डॉक्टरी कर लेंगे, थोड़े दिन काम करके देख लेंगे, लेकिन आधा जीवन अगर ये दिया है संसार को तो आधा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तब से अध्ययन करके हमने कहा कि ये परिवार का क्या सब, एक कॉलेज में एक शहर में रहा होता, अब तो पूरी दुनिया मेरा घर है, कि जहां भी जाओ सेवा करने के लिए इतना अवसर मिल रहा है, तो इसमें कोई कमी की बात नहीं है। ये बड़ा विस्तार होता है, आपका दायरा बढ़ जाता है। आध्यात्मिकता हमारी आवश्यकता है, नहीं तो हम अपने ही अपनी ही संस्कृति में जैसे एलियन हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने परिवारों के अंदर ऐसा वातावरण स्थापित करना। धन्यवाद, धन्यवाद मुकेश जी और परिवार का। हरे कृष्ण। दो मिनट कीर्तन कीजिए आप, नरसिंह।